संध्या जागृति में आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग आए। तो 24 तारीख को वसंत पंचमी थी। वसंत पंचमी यानी माघ महीना। माघ महीना बहुत ही पवित्र माना गया है। माघ महीने में जो भी ठंडे पानी से स्नान करता है, गंगा जी में स्नान करता है, दान करता है, तीर्थ स्थान में जाता है, दर्शन करता है, सेवा करता है, उपवास करता है, भक्तों का संग करता है, भगवान की लीला को सुनता है, इसमें से एक या सब कार्यक्रम करता है, उसको बहुत सारा भगवान की भक्ति में लाभ होता है। इसलिए माघ में इलाहाबाद में मेला भी लगता है एक महीने का, उसको कहते हैं माघी मेला। उस माघी मेला में गंगा के किनारे में जो त्रिवेणी संगम है वहां पर लोग जाके रहते हैं और अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, अन्नदान करते हैं, भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, और कुछ लोग एक महीना रहते हैं, कुछ लोग कुछ दिन रहते हैं, लेकिन माघ महीने में वहां पर जाकर रहना बहुत पवित्र माना गया है। इसी महीने में माघ चतुर्थी को क्या है, श्री भगवान गणेश का जन्मदिन है, गणेश जयंती, गणेश चतुर्थी नहीं, गणेश जयंती। और इसी महीने के पंचमी को कहा गया है वसंत पंचमी। वसंत पंचमी का अर्थ यह है कि वसंत ऋतु इस दिन से आरंभ होता है। ठंड का मौसम जो है उसको कहते हैं शिशिर ऋतु। शिशिर यानी कि बहुत ठंड। हेमंत ऋतु, वो भी ठंड का है। शिशिर पहले आता है, हेमंत उसके बाद में आता है। तो हेमंत ऋतु जो है वो बहुत ठंड का माना गया है, और वसंत पंचमी के दिन में ऋतु बदल जाता है और ठंडक कम कम होकर फिर धीरे धीरे गर्मी आने लगती है। और वसंत ऋतु का महत्व क्या है, वसंत ऋतु में पेड़ में नए पत्ते आते हैं और नए फूल आते हैं। हम लोग क्या कहते हैं उसको हिंदी में, बहार, बहार आ जाती है। मराठी में कहते हैं बहर, बहर आली। बाग में, बगीचे में सब जगह पर नए नए फूल आते हैं, सब जगह रंगी बिरंगी दर्शन होता है, नए फल आते हैं, नए फूल आते हैं, और वो सब नए फल जो हैं और नए फूल जो हैं वो भगवान को अर्पण करते हैं, उसको वसंत पंचमी का उत्सव माना गया है। और वसंत पंचमी का और एक महत्वपूर्ण भाग ये है कि आज के दिन बरसाने की 40 दिन की होली शुरू होती है, वसंत पंचमी के दिन। और वसंत पंचमी से 40 दिन चलती है जो माघ शुद्ध पंचमी को आरंभ होती है, और फाल्गुन शुद्ध पूर्णिमा तक चलती है, तो कुल 40 दिन होते हैं उसके। मतलब 24 तारीख से रोज शाम को जब भगवान का दर्शन खुलता है तो तभी भगवान को रंग उधेड़ते हैं उनके ऊपर, उनकी आरती होती है, उनको नींद से जगाते हैं 4 बजे, पहले आरती होती है, उस आरती के बाद में रंग डाल देते हैं उनके ऊपर, और फिर उस टाइम से लेकर रात तक जब बंद होने का समय आता है तब तक सब लोग भगवान को रंग अर्पण करते हैं और खुद को भी लगाते हैं महाप्रसाद के रूप में। इस प्रकार से होली का उत्सव जो है वो आरंभ होता है, उसको कहते हैं फगुआ। फगुआ यानी फागुन का उत्सव, और फग्गा उत्सव भी कहते हैं उसको, फगुआ भी कहते हैं। और इस फगुआ के दिन, फगुआ के उत्सव में राधा और कृष्ण को कोई अंगूठी देता है, कोई माला पहनाता है, अलंकार है ना, मणि की माला पहनाता है, ऐसे अलंकार बना के भगवान को रोज अर्पण करते हैं। और वो फगुआ का जो प्रसाद है भगवान का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, बहुत ही कृपा वाला होता है। तो इसी वसंत पंचमी के दिन में बहुत सारे संत लोगों ने जन्म लिया है, बहुत सारे संत हैं, जैसे कि पुंडरीक विद्यानिधि हैं, रघुनंदन ठाकुर हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, विष्णुप्रिया देवी हैं। तो आप लोगों को इनका परिचय होना चाहिए, कौन लोग हैं इसमें से। विष्णुप्रिया देवी कौन है, वो चैतन्य महाप्रभु की पत्नी है। चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं कृष्ण है, जिन्होंने भगवान के रूप में अवतार लिया, भगवान के भक्त के रूप में अवतार लिया था। और भगवान का नाम जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को श्री कृष्ण भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर उसका प्रचार किया था। तो अपने जीवन में जब वो पृथ्वी पर उतार लिया उन्होंने, तो उनका पहला विवाह हुआ लक्ष्मी प्रिया से। लेकिन लक्ष्मी प्रिया का सर्प का दंश होने के बाद मृत्यु हो गई उसकी। फिर भगवान की माता जो है उनका नाम है सची माता, पिताजी का नाम क्या है जगन्नाथ मिश्रा, इन्होंने भगवान का दूसरा विवाह किया। उस पत्नी का नाम है विष्णुप्रिया। वो जो विष्णुप्रिया है उसका जन्म वसंत पंचमी के दिन हुआ है और उसकी उम्र 16 साल की थी जब चैतन्य महाप्रभु 24 साल के थे। तब चैतन्य महाप्रभु विश्व के कल्याण के लिए अपना घर छोड़कर संन्यास लेने के लिए निकल गए और अगले 24 साल उन्होंने सन्यासी के रूप में लीला किया दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में, फिर जगन्नाथपुरी में। उन्होंने 24 साल लीला किया। तभी विष्णुप्रिया अपने घर में मायापुर में अकेली अपने सासू के साथ रहती थी। कुछ साल सासू रही, फिर सासू भी गुजर गई। 16 साल से लेकर 96 साल तक वो जीवित रही और दिन में रोती थी वो भगवान की याद करके, और दिन भर जप करती थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक महामंत्र, अभी हमने दो बोले, एक महामंत्र बोलने के बाद एक चावल का दाना यहां से यहां करती थी, दूसरा बोला दो, शाम तक कितने महामंत्र बोले उतने चावल के दाने इकट्ठा करती थी और उतना ही चावल पका के रात को खाती थी, बस एक बार दिन में। क्योंकि भगवान तो चले गए, पति देव चले गए हैं संन्यास लेकर, उनकी याद में कुछ खाने पीने का दिल नहीं कर रहा है। दिन भर जप करती थी दिन भर, और शाम को जितना चावल एक साइड में इकट्ठा हो गया है उतना चावल कितना होगा, 100 ग्राम भी नहीं हो सकता है, 100 ग्राम में कितने दाने होंगे, हजारों दाने होते हैं उसके अंदर। हम लोग तो ऐसा खाते हैं एक साथ में, पता नहीं चलता कितने दाने खा रहे हैं हम लोग, लेकिन जब दाना गिनने का समय आता है तो पता चलता है कि दाने कितने ज्यादा होते हैं, कितने कम होते हैं, सॉरी ज्यादा नहीं होते। और आपको लगता होगा एक साल किया, दो साल किया, ठीक है पति गए दुख हो गया, 10 साल किया होगा, 80 साल किया, 80 साल जवान बच्ची थी वो, फिर और थोड़ा उम्र की हो गई, फिर 40 साल 50 साल की हो गई, 60 साल की हो गई, 70 साल की हो गई, 80 साल की हो गई, 90 साल की हो गई, 96 साल तक उन्होंने भगवान की याद में महामंत्र का जप किया। तो ऐसी विष्णुप्रिया देवी, इतनी आदर्श पत्नी, इतनी सद्गुण संपन्न पत्नी थी वो। भगवान ने कहा भी कि मैं जा रहा हूं घर छोड़ के, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको रोकूंगी नहीं, क्योंकि मैं तो अपना कल्याण सोचूंगी तो विश्व का कल्याण कौन करेगा, और आप विश्व के कल्याण का सोच रहे हैं तो मैं तैयार हूं कि मेरा दुख मिलेगा तो चलेगा मुझे, लेकिन आप जाइए, आपके रास्ते की बाधा नहीं बनूंगी मैं। वो भगवान जो है मकर संक्रांति के दिन बीच रात में चले जाते हैं, जिसकी कहानी मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी भगवान के संन्यास की। तो विष्णुप्रिया का जन्म जो है वो 24 तारीख यानी इस साल के वसंत पंचमी के दिन उनका जन्म हुआ था। और एक सुंदर भक्त का नाम है पुंडरीक विद्यानिधि, वो राधा रानी के पिताजी जो हैं उनका अवतार हैं। राधा रानी के पिताजी का नाम है वृषभानु महाराज। हम जाते हैं ना उधर बरसाने में तो चार पहाड़ हैं, एक पहाड़ का नाम है भानुगढ़, भानु यानी वृषभानुगढ़, वृषभानु महाराज का घर है वहाँ पर, वो राधा रानी के पिताजी हैं। तो वही राधा रानी के पिताजी जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु जब भक्त बनकर आए तभी ये पुंडरीक विद्यानिधि बनकर आए। फिर एक भक्त है उनका नाम है रघुनंदन ठाकुर, ये बड़े विशेष भक्त थे जिनकी कहानी मैं आपको बताऊंगा आज। हाँ सब लोग सुनेंगे ना प्रेम से एकदम। हाँ तो पुंडरीक विद्यानिधि सॉरी रघुनंदन ठाकुर जो है इनके पिताजी का नाम था मुकुंद सरकार। ये मुकुंद सरकार पेशे से डॉक्टर थे, हाँ, और मुसलमान राजा था उस समय, उसके दरबार में वैद्य का काम करते थे। इतने महान भक्त थे भगवान के कि एक बार राजा ने उसको बुलाया, कुछ मेडिकल काम के लिए बुलाया होगा। तो जब गए राजा को मिलने के लिए, तभी राजा को कोई मोर पंख से हवा दे रहा था, देते ना हम लोग मोर पंख से ऐसे हवा। तो जैसे ही मोर पंख को देखा तो उसको कृष्ण की याद आई, मुकुंद सरकार को, और कृष्ण की याद में बेहोश हो गए। तो राजा को अजीब लगा, अरे अभी तो मुझे मिलने आए थे, बात कर रहे थे, बात करते करते अचानक क्या हो गया, बहुत देर तक बेहोश रहे वो। जब होश में आए तो राजा ने पूछा क्या हुआ, तो राजा को कहते हैं कि मुझे ना मिर्गी की बीमारी है, मुझे फिट आते रहते हैं हमेशा। तो राजा कहते हैं कि नहीं, झूठ नहीं बोलना, मैं जानता हूं कि तुम कृष्ण के भक्त हो और तुमने मोर पंख को देखा जो मुझे ये हवा कर रहे थे, मोर पंख को देख के तुमको चक्कर आ गया, मैं समझ गया तुम भगवान के बहुत महान भक्त हो। तो ऐसे महान भक्त का वो पुत्र था रघुनंदन। तो एक दिन उनके घर में भगवान का विग्रह था गोपीनाथ जी का, राधा गोपीनाथ, हाँ, और राधा गोपीनाथ की सेवा करते थे घर पे, वो बड़ी बढ़िया सेवा करते थे घर पे। एक दिन जब दोपहर को भगवान को भोग लगाने का समय आया तो अचानक राजा ने बुलाया, कुछ बीमारी हो गई तो बुला लिया उसको। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, माता जी आपको सोना नहीं है। तो क्योंकि सोने से क्या होता है, मेरा उत्साह जो है ना कथा बोलने का वो समाप्त हो जाता है। तो राजा ने उसको बुलाया, आ जाओ, तुरंत कॉल भेजा। तो समय भगवान को लंच खिलाने का टाइम था, तो उसने कहा कि अरे तो जा रहा हूँ, अभी लंच कौन खिलाएगा। तो छोटे बालक को बुलाया, चल बेटा अभी आपको भगवान को ये भोग लगाना है। बोला अच्छा कैसे लगाना है, बोले थाली लेके जाने का, भगवान के सामने रखने का, तुलसीदल की मम्मी आपको देगी, तो घंटी बजाने का, और घंटी बजाने के बाद में भगवान को बोलने का, भगवान खाओ इसको। अभी छोटे बालक को क्या मंत्र सिखाएंगे, वो क्या क्या मंत्र बोले, तो पहली बार बता रहे हैं वो, जल्दी में इमरजेंसी में बता रहे हैं। तो कहते क्या बोलना है उनको, तो कहते हैं कि भगवान को खाली बोलना है भगवान इसको खाओ, फिर कुछ देर बाद में थाली निकाल देना है घंटी बजा के। ठीक है, अंदर गया थाली लेके, मम्मी ने बना के दिया थाली, तुलसी का पत्ता रखा, अंदर गया दरवाजा बंद कर दिया और अंदर भगवान के सामने रखा, घंटी बजाई, बोले भगवान इसको खाओ। तो भगवान नहीं खा रहे, बहुत देर हो गई, डर लगने लगा कि अगर मैंने भगवान को बोला खाओ और भगवान ने नहीं खाया तो पापा गुस्सा करेंगे। तो रोने लगा, बोले भगवान आप खाओ, आप खाते क्यों नहीं हो। तो भगवान मूर्ति में खड़े और जोर से रोने लगा, भगवान आप खाओ, आप खाते क्यों नहीं हो। तो उसका प्रेम देख के भगवान को भी रहा नहीं गया, भगवान ने आवाज दिया, अरे रघुनंदन मैंने मेरी आंखों से खा लिया है उसको। नहीं किधर खाया, तो सब थाली में वैसा के वैसा ही है। नहीं नहीं मैं ऐसे खाता हूँ रोज, मैं नजर से खाता हूँ। बोले नजर से खाने का कैसा होता है, मैं तो जानता नहीं हूँ, मैं तो हाथ से खाता हूँ, मुंह से खाता हूँ। नहीं नहीं मैं ऐसे ही खाता हूँ। नहीं 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 भगवान आप मुझे चीटिंग कर रहे हो, मेरे पापा मुझे गुस्सा करेंगे बहुत, आपको खाना ही पड़ेगा, जो गोपीनाथ खाओ पापा नाराज होंगे। बहुत जोर से रोने लगा। तो भगवान मूर्ति से प्रकट हो गए, पहले आवाज से बोले, खुद प्रकट हो गए, झुक के गए और पूरा थाली जो है वो खा लिया भगवान ने। तब रघुनंदन रोना बंद हो गया, फिर घंटी बजाया जैसे बोला था, तो खाली प्लेट लेके आ गया। और ये सब करने में बहुत टाइम गया अंदर। हम लोग कैसा होता है, एक घंटी बजाया तो हम लोग बाहर आते हैं और 20 मिनट के अंदर वापस अंदर जाते हैं, और थाली वैसा कैसा रहता है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि भगवान ने उसको देख लिया है, वापस लेके आते हैं, उसके अंदर सब कुछ वैसे रहता है, चावल दाल सब्जी सब वैसे ही होता है। तो इसका जो लीला हो गया ना, बहुत देर रुका, फिर रोया, फिर बात किया, फिर जिद किया, फिर रोया, फिर खाया, फिर एक घंटा गया। तो मम्मी बोल रही है, क्या कर रहा है लड़का अंदर, क्या बात क्या है, इतना देर से अंदर ही बैठा है। अच्छा ठीक है, तो अंदर बैठा है कोई बात नहीं, बाहर आया तो क्या, खाली थाली लेकर आया। मम्मी बोलती है, प्रसाद किधर है। लगाएगा प्रसाद, सब ठाकुर जी ने खा लिया। तो उसको डाउट आता है, मेरा बच्चा इतना सा है लेकिन शैतान हो गया क्या अभी, हाँ झूठ बोलता है, खुद बैठ के अंदर खा लिया होगा पूरा, और आगे बोलता है भगवान ने खा लिया। बोले अच्छा नहीं, मैं तो भक्त हूँ भगवान की, मेरे पिता पति भी भक्त हैं, उनको भी भक्त बनाना है, अभी बचपन से चोरी करेगा तो कैसे चलेगा, कैसा भक्त बनेगा ये? तो बोलते बेटा सच बताओ क्या किया तुमने? तो बोला क्या करे, आप बोला था भगवान को बोलो खाओ, तो मैंने बोला खाओ तो नहीं खा रहे थे, तो मैं बहुत रोया, तो उन्होंने बोला हमने खा लिया है, तो हमने बोला नहीं आपने खाया है, तो हमने बोला नहीं खाना पड़ेगा, तो फिर वो आए और खाया उन्होंने पूरा। थोड़ा अजीब लगा कि बच्चा झूठ बोल रहा है, या तो झूठ बोल रहा है या तो कुछ अद्भुत बात है इसके अंदर, दोनों में से एक है। लेकिन माँ को क्या लग रहा है, झूठ बोलने का चांस ज्यादा है क्योंकि तो बच्चा है ना वो। तो उतने बाद में अपना काम, राजा के पास काम करके आ गए पिताजी। वाइफ को बोले जल्दी जल्दी खाना खिलाओ, देर हो गई आज, प्रसाद लाओ। तो बोले काहे का प्रसाद? बोले क्यों, बच्चों को बोला था ना भगवान को भोग लगाने के लिए। हाँ लगाया उसने, तो किधर है माँ प्रसाद? बोले किधर है माँ प्रसाद? वो तो बोल रहे भगवान ने खा लिया पूरा। तो अरे बोलो ना इधर आओ, क्या हुआ? बोले आपने बोला भगवान को बोलो खाओ, मैंने बोला नहीं खाया, मैं बहुत रोया, तो भगवान उतरे और पूरा खा लिया। बड़ा आश्चर्य हो गया उनको, बोला मेरा बच्चा अद्भुत है बहुत। तो बोले टेस्ट करते उसको। तो उसने क्या किया, बोला एक काम करो, एक लड्डू देने का रह गया भगवान को, ये लड्डू लो और वापस जाके खिलाओ भगवान को, उनको देखना था क्या है, एक्चुअली है क्या। तो वो बेटा छोटी थाली में लड्डू लेके अंदर गया, बड़ा लड्डू था, एक ही लड्डू रखा, और ये छुप गए जाके अंदर देखने के लिए क्या हो रहा है। तो अंदर गया, लड्डू रखा, घंटी बजाया, बोले भगवान लड्डू खाओ। तो भगवान कुछ नहीं बोल रहे, तो फिर रोने लगा, अरे भगवान आप लड्डू नहीं खा रहे, लास्ट टाइम तो खाया था आपने एक घंटे पहले, अभी क्यों नहीं खाते? नहीं मैंने देख लिया उसको, हो गया खा के। नहीं 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 आपको खाना ही पड़ेगा, आपको खाना ही पड़ेगा। तो भगवान ना झुक गए, लड्डू हाथ में लिया और आधा लड्डू खाया, तभी पिताजी सामने आ गए जिम अचानक। तो भगवान ने आधा लड्डू छोड़ दिया उधर ही और फिर मूर्ति बन गए। तब समझ में आया उसको, अरे भगवान ने हकीकत में खाया है, मेरे सामने खाया है। तो जो आधा का लड्डू खाया ना भगवान ने, आधा बच गया ना, आज भी वो लड्डू बचा कर रखा हुआ है मंदिर में, उसका एक मंदिर है अलग से, इसमें वो लड्डू जो है उसको केमिकल वगैरह लगा के ना ऐसा का ऐसा रखा है उसको। आज भी वो लड्डू को दिखाने के लिए एक पूरा मंदिर बनाया है, उसके मंदिर के अंदर लड्डू है वो, उसका किधर है जगह किधर है, वो जो बंगाल में एक जगह है उसका नाम है श्रीखंड, श्रीखंड नाम की जगह है जहां पर इनका घर था, मुकुंद सरकार का और नरहरी सरकार, नरहरी चक्रवर्ती और बहुत सारे भक्त वहां पर रहते। हम लोग गए उधर, हमने लड्डू का दर्शन किया है, और उनका नाम गोपीनाथ जी है भगवान का। तो वो एकदम गले लगाया बच्चे को, अरे मेरा बालक, मैं सोचा था कि ये चोर है, ये तो महान भक्त है, अरे मैंने इतना हजारों बार भगवान को भोग लगाया, कभी भगवान ने खाया नहीं, और आज मेरे बच्चे ने बोला तो भगवान ने खाया, मतलब बड़ा भक्त कौन है, मैं कि मेरा बच्चा? निश्चित रूप से मेरा बच्चा मुझसे बड़ा भक्त है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, भक्त भी तो है ही नहीं हूँ। मैंने डाउट किया उसके ऊपर, हाँ कि भगवान भी खा सकते हैं, इस बात पर मैंने शंका किया। उसकी श्रद्धा देखो, पापा ने बोला कि उनको बोलो खाओ, तो उसने बोला, उसने जिद किया, तो भगवान ने मान लिया उसको, कितना महान भक्त रहेगा मेरा बेचा। तो ये जो बात है ना, वो सब जगह फैल गई कि मुकुंद सरकार का बच्चा इतना महान भक्त है कि उसके लिए गोपीनाथ भगवान ने नीचे उतर कर थाली का पूरा खाना खाया और आधा लड्डू भी खाया। सब जगह फैल गई बात ना कि भाई कोई महान बच्चा है, सब देखने को आने लगे उसको, अरे कौन है वो बच्चा, कौन है वो बच्चा? समझा आपके घर में ऐसा बच्चा होगा तो लोग देखने को आएंगे ना, कौन है, कौन है वो? समझा आप आपका बच्चा स्कूल में फर्स्ट आया, और जितनी बार जितने लोग फर्स्ट आए थे उससे भी ज्यादा मार्क लेके फर्स्ट आया समझो, तो सब गांव वाले आएंगे देखने के लिए, अरे कुछ पेड़ा लेके आएगा, कोई फूल लेके आएगा, कोई शर्ट लेके आएगा, कोई बूट लेके आएगा, कोई पैंट लेके आएगा, बोले बच्चे को कुछ देना चाहिए, कितना बढ़िया बच्चा है। लेकिन सब देखने को आएंगे ना, तो सब लोग आने लगे और पूरे गांव में सब बच्चा फेमस हो गया एकदम। अरे गांव में फेमस हो गया तो गांव के बाहर भी फेमस हो गया, दूर तक उनकी उनका नाम पहुंच गया। तो एक दूर गांव में एक भक्त थे, उनका नाम था अभिराम गोपाल ठाकुर। ये अभिराम गोपाल ठाकुर कौन थे, ये भगवान कृष्ण के मित्र थे, श्रीदामा, राधा रानी के बड़े भाई, इसका अवतार थे वो। उनका बंगाल में एक गांव में जन्म हुआ था, वो भी बड़े अद्भुत भक्त थे, अरे ऐसे अद्भुत भक्त थे वो कि समझो अभी मूर्ति है ये, समझो अगर ये मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया है, भगवान ने अवतार नहीं लिया उसके अंदर, और अगर उस मूर्ति को वो प्रणाम करते थे तो मूर्ति भंग होती थी। अगर अभिराम गोपाल ने अगर प्रणाम किया, अगर भगवान उसके अंदर है तो मूर्ति वैसे की वैसे रहेगी, अगर नहीं भगवान है तो मूर्ति टूट जाएगी, भंग हो जाएगी। अच्छा किसी भक्त को प्रणाम किया और अगर वो भक्त जो है भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है तो मर जाएगा, वो संत नहीं होगा। अभी वो मन में इच्छा होगी कुछ पैसे की, इसकी उसकी, सेक्स की और खाने पीने की कोई इच्छा उसको है मन में, भगवान को छोड़कर अगर इच्छा होगी, और अगर गलती से अभिराम ने उसको प्रणाम कभी किया तो वो वहीं कहीं मर जाएगा। ऐसा अद्भुत भक्त थे वो। उनके पास में एक चाबुक था, उसका नाम था जय मंगल चाबुक। वो प्रेम से जिसको मारते थे चाबुक से, वो चाबुक लगते ही वो व्यक्ति के अंदर प्रेम का संचार होता था, प्रेम का संचार मन में हृदय में होकर वो प्रेम से पागल होता था भगवान की भक्ति के लिए। तो उन्होंने इनका नाम सुना कि श्रीखंड में मुकुंद सरकार नाम के भक्त का एक बालक है, उसका नाम रघुनंदन है, और उसके लिए गोपीनाथ जी ने स्वयं भोजन किया, मैं जाना चाहता हूं उसको देखने के लिए और मैं दर्शन करूंगा उसको, उसका प्रणाम करना चाहता हूं मैं। तो वो आने वाला है ये खबर यहां तक फैल गई कि अभिराम गोपाल ठाकुर जो है वो आ रहे हैं इसको देखने के लिए। तो उसकी मैया को कैसा लगा होगा बताओ? अच्छा लगा होगा। अरे अभिराम गोपाल ठाकुर को क्या मालूम है लोगों को, जिसको प्रणाम करता है अगर भगवान का भक्त शुद्ध नहीं है तो मर जाएगा वो, तो अच्छा नहीं लगा उसको, बहुत डर गई वो मैया। अरे आपका बच्चा बड़ा भक्त होगा भगवान का, लेकिन अपना बच्चा तो बच्चा ही होता है ना, वो थोड़ी सोचती है कि मेरा बच्चा संत है और महात्मा है और सब इच्छाओं से मुक्त विरक्त हो गया है, सन्यासी भाव में है, वो तो बच्चा ही होता है। तो उसको डर लगा कि ये आदमी अगर मेरे बच्चे को प्रणाम करने को आया तो मेरा बच्चा मर जाएगा। तो कैसे भी कर कोशिश किया उसने कि नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, लेकिन वो निकल गया आदमी उधर से इसको मिलने के लिए। तो उसने क्या किया, अपने बच्चे को पड़ोसी के घर में छुपा दिया। कुछ देर बाद में अभिराम गोपाल ठाकुर पहुंच गए और पूछे मुकुंद सरकार कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने बोला इधर जाओ ये उनका घर है। तो वहां पर आए, बोले मुकुंद सरकार यही रहते हैं क्या, बोला हाँ इधर ही रहते हैं, उनका बच्चा किधर है रघुनंदन ठाकुर, तो कहते नहीं है वो किधर खेलने गया, पता नहीं किधर है, झूठ बोल देती। तो अभिराम गोपाल ठाकुर जो है वो जानते हैं कि यही घर है उनका, तो वो कीर्तन करने लगते हैं और जोर जोर से नाचने लगते हैं। उनके कीर्तन की प्रेम भरी मधुर आवाज सुनकर सब लोग नाचने लगते हैं, इतना प्रेम से कीर्तन करते हैं। तो वो कीर्तन की आवाज जो है बच्चे को पड़ोसी के घर में बंद करके रखा है ना, वहां सुनाई पड़ती है, तो बच्चा खुद जो है दरवाजा खोल के बाहर आता है और नाच करने लगता है अभिराम गोपाल ठाकुर के साथ। दोनों बहुत झूम झूम कर नाचते हैं। मम्मी को टेंशन आ रहा है, अरे मैंने इसको छुपा के रखा था क्यों आया बाहर, पता नहीं अभी अभिराम गोपाल ठाकुर क्या करेंगे, अरे पता नहीं क्या करेंगे, अभी दंडवत करेंगे तो मेरा बच्चा मर जाएगा। तो वो रो रही है, सब लोग नाच रहे हैं, वो रो रही है, माँ का दिल है ना अल्टीमेटली, इतना टेंशन है, पता नहीं अभी अचानक दंडवत करेगा तो क्या होगा, उसको वो टेंशन है, ये सब आनंद लेके नाच रहे हैं तो उसको कुछ उसका फर्क नहीं पड़ता है। वो देख रही कहीं दंडवत न करे मेरे बालक को, कहीं चाबुक न मार दे उसको, और जो उसको नहीं चाहिए था वही हुआ, कीर्तन बंद हो गया। और कीर्तन बंद होते ही अभिराम गोपाल ठाकुर ने रघुनंदन को प्रणाम किया, फिर क्या हुआ, क्या हुआ बताओ ना, क्या लगता है आपको? कुछ नहीं हुआ उसको, वैसा का वैसा रहा हूं। और एक प्रूफ मिला, ये संत है पुरुष, उसके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं है, भगवान का परम संत भक्त है ये। तो वो और नाचने लगे, तो उसने चाबुक निकाला और उसको मारा, एक चाबुक मारा तो प्रेम से भर गया बच्चा, आकाश में कूदा ऐसा जोर से, प्रेम से इतना प्रेम आया उसके अंदर, क्योंकि अभिराम गोपाल ठाकुर की कृपा है ना, वो चाबुक तो स्पर्श किया तो एकदम कुचला आकाश में, प्रेम से नीचे आया तो और एक बार चाबुक मारा उसको। तो मैं बोले बस बस मत मारो मत मारो, वो झेल नहीं पाएगा इतना आनंद, आखिर माँ का दिल है ना, वो बोले इतना प्रेम से पागल हो जाएगा तो जिंदा नहीं रहेगा, वो बच नहीं पाएगा, आप छोड़ो, बस दो काफी हो गया, दो कृपा बहुत हो गया, धन्यवाद। ऐसे थे बालक रघुनंदन ठाकुर, जिसका जन्म वसंत पंचमी में हुआ है। तो फिर एक दिन क्या हुआ, श्रीखंड से मुकुंद सरकार अपने बालक को लेकर जगन्नाथपुरी गए चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु मिलने गए तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बड़े प्रेम से एक सवाल पूछा। आपको बच्चा है, क्या नाम है उसका? हाँ, जयदेव। समझो अगर जयदेव को लेके, और जयानंद, दो बच्चे हैं इसको, तो जयदेव को लेके मेरे पास आया और मैं उसको पूछेगा, अरे क्या नाम आपका? सुरेश, सुरेश कामती। जयदेव आपका बच्चा है कि आपका पिताजी है? पिताजी कौन है? जयदेव की आप। तो वो क्या बोलेगा? मैं पिताजी हूं, वो मेरे बच्चे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उसको पूछते हैं, मुकुंद सरकार को, अरे मुकुंद, इसमें पिताजी कौन है? आप पिताजी के रघुनंदन पिताजी हैं। तो क्या जवाब देना चाहिए आपको? मुकुंद को क्या जवाब देना चाहिए? मुकुंद को बोलना चाहिए, नहीं मैं पिताजी हूं, मैंने जन्म दिया, मेरा बेटा है वो। लेकिन मुकुंद जो है वो भगवान के प्रश्न जो पूछ रहे हैं, भगवान उसके मन का भाव समझ जाते हैं और भगवान को जवाब देते हैं, हाँ भगवान मैं बेटा हूं और रघुनंदन मेरा पिताजी है। तो भगवान जोर से हंसते हैं, बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो? उन्होंने कहा, जो व्यक्ति हमको भक्ति मार्ग में कुछ सिखाता है वो हमारे पिता समान है, और मैंने शरीर से जन्म जिसको दिया है, लेकिन भक्ति क्या होती है ये मेरे बेटे से मैंने सीखी है। क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं था, रोज घंटी बजाता था, लेकिन भगवान कुछ खाते नहीं थे, इसने घंटी बजाया तो खाया उसने। तो पिताजी कौन है? मैं बालक हूं, मेरा पिताजी है। और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, हाँ सही बोल रहे हो तुम, यही बात सही है कि तुम बालक हो और रघुनंदन तुम्हारा पिताजी है, ऐसा है। तो ये रघुनंदन बहुत फेमस भक्त हैं, बहुत उनका स्टोरी बहुत बढ़िया स्टोरी है। तो इस तरह से ये रघुनंदन ठाकुर से हम सीख सकते हैं कि बालक कैसा होना चाहिए। हाँ, सबसे पहले माता पिता को भक्त बनना चाहिए। रघुनंदन उस घर में जन्म क्यों लिया उसने? अगर माता पिता भक्त नहीं होते तो वो वहाँ पर नहीं आता, उसकी आत्मा वहाँ पर जन्म नहीं थी, उसके घर में प्रवेश नहीं करती। अपने गर्भ में कौन सी आत्मा आती है? आपने भी जन्म दिया है, आपने भी दिया है, सब लोग ने दिया होगा। जैसे तुम्हारा मन है, तुम्हारे मन में क्या है? बहुत सारा इच्छा है, पैसा चाहिए, कपड़ा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। हाँ, जैसे आपकी इच्छा है वैसा आत्मा आपके अंदर प्रवेश करेगा। इसलिए चोर के घर चोरी जन्म लेता है, क्योंकि उसके लिए वो अच्छा है, वातावरण उसका जैसा भाव है वैसा वहाँ आएगा। अगर आप लोग बहुत बिजनेसमैन हो तो आपके घर में भी वैसा ही आत्मा जन्म लेगा, वो भी जन्म से बिजनेस करेगा। देखो बनिया का बालक कैसा रहता है, पढ़ाई में ठंड पाल रहता है, गणित में कितना मार्क? 1, 4, 5। इतिहास में कितना? 10, 100 में से। साइंस में कितना? 5 मार्क 100 में से। लेकिन दुकान में बैठेगा तो फटाफट धंधा करता है वो, कितना काम, माल बेचने का, क्या कहाँ से लाने का, किधर से निकालने का, कैसा बटा भाव करने का, सब मालूम है उसको, क्योंकि उसकी मति जो है ना वो बिजनेस के अंदर है। जो ब्राह्मण का पुत्र होता है, जो मंत्र जपता है, यज्ञ करता है, पूजा करता है, हाँ पुरोहित बन के रहता है, उसका बच्चा जो है वो भी उसको पिकअप कर लेता है, जो पिताजी का व्यवसाय है। अभी आपका लड़का जो है वायरमैन का काम तुरंत पिकअप करेगा, क्योंकि आप भी वायरमैन हो, इलेक्ट्रिशियन हो, है ना, उसके लिए देख रहा है वो, तो उसको भी इजी पड़ेगा वो सब कुछ। डॉक्टर का बच्चा अगर दवाखाना बना के रखा है, हॉस्पिटल बना के रखा है, तो बोलेगा मैं भी डॉक्टर बनता हूँ, और घर में से बचपन से डॉक्टर की बातें सुनते आ रहे हो, तो बन सकता है। वैसे जन्म होने के पहले तुम्हारा मन में क्या क्या विचार है उसके अनुसार तुम्हारा बालक तुम्हारे गर्भ में आता है, वैसा ही जीव आएगा। समझा, आपको पिक्चर देखने का है, बहुत थिएटर है, बहुत सारे पिक्चर लगे हुए हैं, आप कहाँ जाओगे? जो पिक्चर आपको देखना है, जो जहाँ लगा है उधर आप जाओगे। वैसे वो जीव भटक रहा है आकाश में, कहाँ उतरूँ, कौन से गर्भ में उतरूँ, वहीं उतरेगा जहां पर उसका जो काम है वो पूरा हो सकता है, जो उसको करना है वो वहां पर होगा तो वहां पर आएगा वो। तो कोई महात्मा होगा वो भटक रहा है आकाश में, वो कहां उतरेगा? उधर ही उतरेगा जिसके घर में भक्ति होती है, जिसकी पत्नी और पति दोनों भक्त हैं, ऑलरेडी भक्ति कर रहे हैं, उधर ही उतरेगा वो, उधर ही गर्भ में उतरेगा और जन्म लेगा, ताकि जन्म से ही जो उसको करना है वहां पर ऑलरेडी हो रहा है, उधर वो अपना काम उधर कंटिन्यू कर सकता है। और एक बात है, ऐसे कहा गया है कि शाम के समय सूरज जब ढल रहा है या अभी भी ढल चुका है, अभी तो पूरा अंधेरा नहीं हुआ है, उस टाइम पे पति पत्नी को सेक्स नहीं करना चाहिए। क्यों, क्या खराबी है? शादी किया है तो क्या प्रॉब्लम है? लेकिन वो समय बहुत गलत माना गया है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आकाश में अदृश्य रूप में शिवजी भगवान भूत प्रेत पिशाच योनि डाकिन वेताल को लेकर घूमते रहते हैं, क्योंकि वो भी आत्मा है ना, शरीर नहीं है उनको, पापा आत्मा है वो, निचली योनि माना गया है, पतित योनि माना गया है, पापी योनि माना गया है उसको, जो पाप करते हैं वो भी भूत प्रेत बन जाते हैं, वो सब लोग शिवजी का आश्रय लेते हैं और शिवजी उनको लेकर घूमते रहते हैं। कोई अगर उस समय सेक्स करता होगा पति पत्नी तो उसके घर में वो पापी जीव प्रवेश करता है। इसीलिए हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ था, क्योंकि तो उसकी माता ने अपने पिताजी के साथ पति के साथ में बहुत जिद किया था कि अभी करना है। पति ने बताया अभी समय अच्छा नहीं है, अभी रात में करेंगे संबंध आपका। पत्नी ने बहुत जिद किया, नहीं नहीं अभी का भी करना है। तो जो भी कुछ हुआ उसके बाद में पति ने बताया, पति बहुत संत थे, उसने बताया तुमने जिद किया ना, अभी दो भयंकर राक्षस जन्म लेंगे। और जैसे ही वो गर्भ में आए तभी से भूकंप होने लगा, सब जगह पे आतंक मचने लगा। देखा, देखो अभी वो तुम्हारे गर्भ में दो आ गए, वो जैसे ही पृथ्वी पर तुम्हारे गर्भ में प्रवेश किया देखो क्या क्या हो रहा है, आकाश में धूमकेतु गिर रहा है, उल्कापात हो रहा है, भूकंप हो रहा है, तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, आवाज आ रहा है बहुत जोर जोर से, धरावनी आवाज आ रही है, भड़गड़ाहट हो रही है। बोले ये लक्षण क्या है? ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु दो भयंकर राक्षस जो है वो भी तुम्हारे गर्भ में आ गए, आगे जन्म लेंगे, पृथ्वी पर हाहाकार मचाएंगे, सब जगह अशांति कर देंगे, सब यज्ञ याग बंद कर देंगे, अत्याचार करेंगे, सब लोगों को अच्छे लोगों को मारेंगे, संतों को कष्ट देंगे। तो इसलिए हम लोगों को पता चलना चाहिए कि कितना भी इच्छा हुआ ना रात तक रुकना चाहिए, शाम के समय जब सूरज ढल गया हो पूरा अंधेरा नहीं हो गया हो उस समय सातवें नहीं आना चाहिए, उस समय क्या करना चाहिए? इसलिए हम उस समय पर घी का दीपक भगवान को चलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं, आरती करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन गाते हैं, सब लोग एकत्र होकर भगवान के बारे में सुनते हैं। क्यों? जो भूत प्रेत आकाश में घूम रहे हैं उसका परिणाम आपके मन पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां पर घी का दीपक जलता है, जहां पर गाय के गोबर का धूप जलाते हैं, जहां पर अगरबत्ती जलाते हैं, वहां भूत प्रेत प्रवेश नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, शाम होते ही पहले घंटी बजाते हैं, टंग डंग 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 डंग, फिर वो घंटी बजाते हैं, फिर भगवान को दीपक लगा के भगवान की आरती करते हैं, उसको क्या कहते हैं? संध्या आरती। संध्या आरती का समय क्या है? जब सूर्यास्त हो रहा है तभी वो आरती करनी चाहिए, ताकि आसमान में सब जगह जो भूत प्रेत घूम रहे हैं आसपास में वो आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए आप देखो कभी भी जो छोटा सा बालक है अभी भी जन्म हो गया है वो अचानक शाम को रोने लगता है, देखा होगा आपने कभी, ध्यान से देखा हो तो याद आएगा आपको, अगर सो भी गया हो तो अचानक वो उठ के जोर से रोने लगता है, तो उसको माता उठा के ले मंदिर में लेके आती है, घर के मंदिर में, और घंटी बजाती है और दीपक जलाती है तो शांत हो जाता है वो, क्योंकि जो भूत प्रेत घूम रहे हैं ना वो बच्चों को कष्ट देते हैं, कष्ट देते हैं और पीड़ा देते हैं, तो छोटा बच्चा तो कोमल होता है बेचारा, कमजोर होता है, नाजुक होता है, वो डर जाता है उसके अंदर। इसीलिए संध्या के समय सब लोगों को भगवान के नाम का जप करना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण लोगों को बताया गया है कि गायत्री मंत्र जो दिया है उसको सवेरे एक बार सूरज उगने के पहले, दोपहर को 12 बजे और शाम को सूर्यास्त के समय गायत्री का जप भी करना चाहिए, ताकि तुम्हारे मन पर वो भूत प्रेत का असर न हो। वो जो असर होता है, अब भगवान का नाम नहीं करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, कोई शराब पीता है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, और कुछ पाप कर रहा है, मांस खा रहा है उस समय, कुछ पार्टी कर रहा है, तो उसका दिमाग जो है ना वो उसके मति से भ्रष्ट हो जाता है, गलत काम करने को प्रवृत्त करता है। वो गलत काम करने का जो प्रवृत्ति है उससे बचना है आपको, तो संध्या के समय भगवान का भजन कीर्तन आरती करते रहना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं पहले, कुछ भी करने के पहले मंदिर जाते हैं। कल रात में कुछ बुरा सपना आया है, रात में कुछ बुरा घटना हो गया है, कुछ और कुछ अशुभ घटना हो गई है, कुछ अशुभ विचार मन में आ रहे हैं, सपने का विचार मन में अभी चल रहा है, कुछ बहुत भयंकर सपना आया था, या तो कुछ कुछ भी चल रहा है, उसका असर निकालने के लिए दिन की शुरुआत पहले मंदिर में जाके करते हैं। पहले पवित्र भगवान का दर्शन करते हैं तो भगवान जो है सब मन का जो नोटबुक है साफ कर देते हैं, पूरा स्वच्छ कर देते हैं। तो फिर जब करते हैं, फिर काम पे जाते हैं, काम करते हैं पूरा, जैसे ही शाम होती है दोबारा स्नान करके वापस मंदिर जाते हैं, या तो घर के मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं। इसको कहते हैं मनुष्य का जीवन। अगर ये कोई नहीं करता है तो वो मनुष्य नहीं है, वो जानवर है। क्योंकि जानवर जो है जैसे उठता है क्या करता है, खाने को क्या मिल रहा है, सेक्स करने को क्या मिल रहा है, किधर भागना है कोई अटैक करेगा तो, देखो कुत्ता उठता है पहला ढूंढने लगता है किधर खाना मिल रहा है। कोई भी देखो आप, कुत्ता बिल्ली चूहा जो भी जानवर, जितना पंछी मच्छर जो है, जो भी देखो, जो नींद से उठता है पहला किधर खाने को मिल रहा है वो ढूंढ रहे थे। ये मनुष्य कैसा है, जो उठता है स्नान करता है पहले, पहले भगवान को याद करता है, फिर खाना पीना नाश्ता जो है वो काम धंधा जो है उसके बाद में करता है, उसको मनुष्य कहा गया है। इसलिए रघुनंदन के एग्जाम्पल से हम क्या सीख सकते हैं, क्योंकि मुकुंद सरकार और उसकी पत्नी बहुत महान भक्त थे, रघुनंदन की आत्मा ने उनके गर्भ में आने का निर्णय लिया, इसलिए वो उनके घर पे आए, क्योंकि उनके घर में ऑलरेडी भक्ति हो रही थी तो उसको बचपन से ही भक्ति करना आसान हो गया था। प्रभुपाद भी कहते थे कि मुझे भी मेरे पिताजी ने बहुत अच्छा बचपन में रखा था। कैसे, मैं रोज सवेरे कैसे उठता था, मेरे पिताजी जब घंटी बजाते थे और आरती शुरू करते थे तो वो आरती और शंख की आवाज सुनकर मैं नींद से उठता था बिस्तर में, फिर बिस्तर में उठकर ऐसा उल्टा होके ऐसा गाल पर हाथ रख के पूरी आरती देखता था मैं। पापा को मालूम नहीं बच्चा क्या कर रहे हैं, पापा को बताया बच्चा सो रहा है, लेकिन बच्चा जो है बिस्तर में उठ गया है और पापा आरती कर रहे हैं पूरे आधा घंटे के लिए, पूरा भजन आंख बंद करके दीपक घुमा रहे हैं, वो भजन से मुंह से भजन गा रहे हैं, भगवान की प्रेम से आरती कर रहे हैं, वो पूरा जो सीन है वो बालक देख रहे हैं। बोले ये सब देखते देखते मैं बड़ा हो गया, ये बचपन का संस्कार जो है मैं कभी भूल नहीं सकता, मेरे पिताजी ने मुझे कुछ समझ में आने के पहले ही ये संस्कार दे दिया था, इसलिए मेरे चरित्र में या मेरे व्यक्तित्व में मेरे मन के अंदर ये बहुत गहरी छाप है मेरे पिताजी की संस्कार की, तो मैं कभी बड़ा होने के बाद भी भूल नहीं पाया। इसलिए आज मैं गुरु हूँ, प्रभुपाद बोलते थे अभी बहुत थोड़ा हरे कृष्ण मंदिर बन गए हैं, शिष्य बन गए हैं, पुता छाप दिया है, लेकिन पिताजी ने जो संस्कार दिया था वो कभी मैं भूला नहीं। मेरे पिताजी कोई फेमस संत नहीं थे लेकिन वो संत जरूर थे, रोज शाम को जब घर पे आते थे तो खुद खाना खाने के पहले बाहर जाकर पुकारते थे, कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है क्या, कोई साधु है, भोजन चाहिए किसी को, ऐसे अनाउंस करते थे। फिर दो चार एक दो लाख एक दो चार जो है खड़े उधर है जिसको आना है खाना है वो आते थे, पहले उनको खिलाते थे, फिर संतुष्ट करने के बाद दक्षिणा देते थे, और जाने के समय अपने बेटे को मतलब प्रभुपाद जी को अभय को सामने करते थे और बोलते थे ये मेरा बेटा है, इसको आप आशीर्वाद दे दो कि ये राधा रानी का भक्त बन जाए, और उसके बाद में वो साधु लोग उसको बच्चे को आशीर्वाद देते थे, उसके बाद में अभय के पिताजी खुद भोजन करते थे, और संडे मंडे को नहीं खाली रोज, ऐसे नहीं कहा दिवाली है चलो बाहर किसी को पुकारते हैं, अरे आज दशहरा है चलो किसी को पुकारते हैं, अरे आज गणपति है जरा पुकारते हैं अच्छा दिन है, ऐसा नहीं, एवरीडे, ये हमारा संस्कृति है, हमारा कल्चर है ये। तो ऐसे घर में हमारे अभय चरणारविंद प्रभुपाद जी ने जन्म लिया, इसलिए इतने महान भक्त बने वो आगे जाकर। तो आप लोगों का कर्तव्य क्या है इसमें, आपके भी बच्चे हैं ना घर में, सबके घर में बच्चे हैं, हम तो जन्म से भक्त नहीं थे, जन्म के 20 साल के बाद में हमको थोड़ा अक्कल आया, फिर हम भक्त बने। अभी भी भक्त बने नहीं, अभी बन रहे, कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन पूरा नहीं बने अब तक। लेकिन हमारे बालक जो है उसको छोटी अवस्था में आप लोगों को संस्कार देना है भगवान का, भक्ति का। क्योंकि अगर आपका बालक को आपने संस्कार दिया और वो अगर वो महान भक्त बना तो उसकी वजह से आपका मोक्ष होगा। आया समझ में आपको? जब तुम्हारा बच्चा भक्त बनेगा और तुम्हारे लिए तर्पण करेगा तो उसके तर्पण की वजह से हम लोगों को मुक्ति मिलेगी। इसलिए घर में भक्ति का वातावरण रखो, मांस मच्छी मत खाओ, शराब तम्बाकू बीड़ी मत करो, जुआ मत खेलो, नशा मत करो, हाँ व्यभिचार मत करो, अपनी बीवी के साथ में रहो अच्छी तरह से, वातावरण शुद्ध रखो। क्योंकि घर का वातावरण अगर अशुद्ध रहेगा, मांस खाते रहेंगे, शराब पीते रहेंगे, नशा करते रहेंगे, शाम को पापा टाइट होके आता है, हाँ, और बक 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 करता है, मम्मी को मारता है, ये अगर उसको देखने को मिलता है रोज का सीन, तो क्या संत बनेगा वो? सोचो आप जरा। आपके घर में पिताजी आया है दारू पी के टाइट होके आकर गाली बक रहा है माँ बहन की, और मार रहा है माँ को और बहन को मार रहा है, अपनी खुद की मम्मी को भी मार रहा है, और बच्चा देख रहा है, वाह क्या बढ़िया सीन है, क्या लीला चल रही है, हाँ, तो भक्त नहीं बनेगा, बोलेगा मैं भी करूंगा ऐसे ही, क्योंकि मेरे पापा कर रहे हैं तो भी अच्छा होगा जो पापा करते हैं। वो भी एक तो डर जाएगा देख के, और डर के मारे ही बड़ा हो जाएगा, डर देख के वो भी बड़ा होगा, फिर उसको गुस्सा आएगा पापा को देख के, फिर बड़ा होगा और उसको गुस्सा आएगा, वो बजवान मजबूत बनेगा तो पापा को मारेगा। है सबके घर की कहानी ऐसी है, बचपन में डर जाते हैं, पापा गाली देते डर जाते हैं, बहुत कांपते हैं ऐसे 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 ऐसे, थोड़े बड़े हो गए, जवान हो गए, शक्ति आ गया, थोड़ा पापा थोड़ा बुढ़ा हो गया, फिर दारू पे के आ गया तो पापा को ही मारते धनाधन। अभी ऐसा वातावरण तुम्हारे घर पे रहेगा तो वो जो देख रहा है बालक, जो पहले डर गया बाद में पापा को मार रहा है, वो संत बनेगा क्या? वो भी ऐसा ही गुंडा बनेगा, वो भी बाहर जाके बीड़ी पी के आएगा, क्योंकि पापा को देख रहा है बचपन से, बीड़ी फूक रहा है, तम्बाकू दे रहा है, क्या क्या कर रहा है, ड्रग ले रहा है, देखते आ रहे हैं बचपन से, घर में मछली आ रही है, अंडा आ रहा है, पापा बैठ के मुर्गी का जो गर्दन है वो मरोड़ के मुर्गी को मार देता है, फिर मम्मी उसको पंख निकाल देती है उसकी, फिर पकाते हैं और खाते हैं, तो वो भी वही करेगा। तो तुमने दिखाया है वही सीखेगा, वो तुमने अच्छा सिखाया तो अच्छा सीखेगा, तुमने गलत दिखाया तो गलत सीखेगा, उसमें क्या है, उसको क्या मालूम उसको अच्छा बुरा क्या है। माँ बाप जो करते हैं वो बढ़िया, सबसे माँ बाप उसके पहले गुरु होते हैं। माँ बाप क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो माँ के रूप में? वो बालक देख रहा है, वो देख के ही वो करता है। तुम पापा से जोर से बात करते हो तो वो भी पापा से जोर से बात करेगा। तुम झगड़ा करते हो उस अपने पति से तो वो देख रहा है, वो भी जोर जोर से बात करेगा जब उसका समय आएगा तो, क्योंकि वो सब देख रहा है, उसको प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं है, वो जो कुछ सीन देख रहा है वो ही सीख रहा है पूरा। चाहे आप गरीब हो, चाहे आप बहुत डॉक्टर पढ़े लिखे हो, या चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, कुछ भी हो, आपका बालक वही देख रहा है जो आप कर रहे हो। अगर आप चीटिंग कर रहे हो, किसी को फंसा रहे हो, किसी को धंधे में लूट रहे हो, वो भी देख रहा है बालक। दुकान में बालक बैठा है, आप भी बैठे हो और पापा बोल रहे हैं अरे 10 रुपये बोल उसको, पापा इस पर 5 रुपये लिखा है, नहीं नहीं 10 रुपये बोल, 10 रुपये ले, तो उसको क्या लगेगा, ऐसा ही है, ऐसा ही करना चाहिए, मेरे पापा करते थे ना। तो बचपन से उसको आप बोलते ना बाल कड़ू, वो दे रहे हैं चीटिंग का बाल कड़ू दे रहे हैं, मांसाहार का दे रहे हैं, व्यभिचार का भी दे रहे हैं, झूठ बोलने का भी दे रहे हैं, चीटिंग करने का दे रहे हैं, लोगों को कष्ट देने का दे रहे हैं, उल्लू बनाने का दे रहे हैं, झगड़ा करने का, गुस्सा करने का, मारामारी करने का, जो भी बाल कड़ू पिला रहे उसको आप, आपको पता ही नहीं क्या पिला रहे उसको। बच्चा फिर वैसा ही बनेगा। इसलिए कहते हैं बच्चा जो होता है वो माँ बाप की प्रतिमा होती है। आप बाद में ऐसा बोल नहीं सकते पता नहीं कहाँ से सीखा सब कुछ, ये इतना गंदा लड़का पता नहीं कहाँ से आया, अरे तुमने ही तो सिखाया उसको, और कहाँ सीखेगा वो, पहली पाठशाला तो घर पे ही है उसकी, पहला स्कूल तो घर है उसका, बाद में जाएगा मॉन्टेसरी में, लेकिन 5 साल तक तो घर पे रहा ना वो, उसके बाद भी घर पे रहता है, कुछ समय वहाँ जाता है तो वहाँ का भी ट्रेनिंग लेता है, यहाँ का भी ट्रेनिंग, दोनों मिल के वो बन जाता है खुद का। इसलिए हम सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि बच्चे को जन्म देना एक तरह से आसन है। हाँ, पति पत्नी साथ में आ गए, सो गए तो बच्चा हो सकता है, लेकिन जन्म देना आसान है, अच्छा संस्कार देना बहुत मुश्किल बात है। और अच्छा संस्कार देना चाहिए, क्योंकि कुत्ता बिल्ली को जब बालक होता है तो कोई संस्कार नहीं होता है ना, उससे कोई उम्मीद करते कि संस्कार होना चाहिए। आप लोग जन्म देते हो तो संस्कार की उम्मीद होती है, होते ना। तो क्या बोलते हैं, ये कौन सा पोर रहे आए है शिकल आए बढ़ चला, लेकिन कुत्ता आके तुमको काटता है तो आप बोलते हो क्या, ए किसका किसका बच्चा कुत्ता है रे, इसका पिताजी कुत्ता कौन है, जरा उसको मिलना है मुझे, किधर है उसका पिताजी कुत्ता, ये सिखाया गया उसने अपने बच्चे को काटने के लिए, ऐसा बोलते हैं कभी आप। लेकिन अगर किसी ने पेंसिल चुराया तो आप बोलेंगे ये किसका बच्चा है, ये क्या सिखाया है, कुछ संस्कार नहीं, कुछ ट्रेनिंग दिया नहीं, कुछ नहीं किया, क्योंकि वो मानव का बच्चा है, कुत्ता और बिल्ली का बच्चा नहीं है वो। इसलिए कुत्ता और बिल्ली के बच्चे के सामने आपके बच्चे का अच्छा संस्कार होना चाहिए, ऐसे लोग उम्मीद करते हैं, आप भी करते हैं और दूसरे भी करते हैं, आप दूसरों के बारे में करते हैं और दूसरे आपके बारे में करते हैं कि आपको अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देना चाहिए। इसलिए पहले खुद भक्त बनना चाहिए, अगर जन्म से नहीं तो बाद में बनना चाहिए, और खुद भक्त बन के जो भी सीख रहे हैं वो बालक को सिखाना चाहिए। सबसे पहला मांसाहार नहीं ये सिखाना चाहिए, किसी को मार कर मांस नहीं खाना चाहिए बेटा, ये सिखाना चाहिए। नशा नहीं करना चाहिए, नशा बहुत खराब चीज है जीवन के लिए। जुआ नहीं खेलना चाहिए, जवान होने के बाद किसी की औरत को देखना नहीं चाहिए, शादी होने के बाद अपने औरत के साथ रहना चाहिए, ये संस्कार बालकपन से ही अपने बच्चे को देना चाहिए। मुझे अभी भी याद है, मेरे पिताजी ने मुझे बहुत छोटी अवस्था में बताया था कि बेटा कभी भी लव अफेयर मत करना, और लव अफेयर करोगे तो ये संबंध नहीं करना, शादी के बाद ही करना है आपको। मेरे मन में इतना फिट हो गया था, आज भी मेरे पिताजी को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि छोटेपन में मेरे पिताजी ने मुझे दिमाग में एक इंजेक्शन लगाया था कि ये नहीं करना है आपको, कितना भी आपको मौका आएगा आगे करने का, शादी के बगैर नहीं करना है। तो संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत पावरफुल भी होते हैं, और जितना बचपन में देंगे उतना ज़्यादा हदर गहराई तक पहुँचते हैं वो, और गहराई तक घुस जाते हैं। आपको देखो बचपन में किसी ने, आप छोटे से थे, पड़ोसी ने आपको मारा था, अभी भी आपको याद आता होगा, अरे मैं ओडिशी होते तेने मारा मारला होता। हाँ, मैं एक बार साइकिल चला रहा था तो मैं छोटा था, साइकिल बड़ी थी, तो एकदम कोई बीच में आ गया तो मेरा बैलेंस छूट गया, तो मैं ऐसा साइड में गिरा तो एक आदमी के ऊपर गिरा, तो आदमी ने ना आओ ना ताव देखा ना आओ, मुझे एक लगा दिया पूरा। मैं पूरा बचपन उसको देखता था, मैं बड़ा होऊंगा ना इसको मारूंगा, मैं अभी बच्चा हूँ, जब बड़ा बनूंगा ना तब ते बुढ़ा बनेगा तब मैं उसको धोऊंगा अच्छी तरह से। मतलब मेरे को एकदम चोट लगी थी कि मैं अच्छा अच्छा बच्चा ऐसा ही गिर गया था, तो उसने मुझे संभालने के बदले में पिताजी की तरह, चाचा की तरह, मामा की तरह मुझे उसने चाटा लगाया और दो गाली भी दिया ऊपर से। तो जब मैं बड़ा हो गया तो पापा को बोला, पापा ये जो है ना, इसने मुझे वो दिन गिरने के बाद में मारा था। तो वो जो दुख भी है आदमी भूलता नहीं है, और अगर पापा ने अकेले में कुछ केला खिलाया था, कुछ रबड़ी खिलाया था, वो भी आपको याद आता है कि पापा ने मुझे इतने समय कितना प्रेम किया था। तो अच्छी और बुरी चीज जो बचपन की होती है ना, बहुत देर तक हमको याद आती है और कभी भूलते नहीं हम लोग उसको। उसी तरह से अगर अच्छी चीज आपने बच्चे को सिखाई बचपन की उम्र में, तो जिंदगी भर उसको याद रखेगा, और उसी कच्ची उम्र में उसने आपको, आपने उसको बुरी चीजें दिखाया, बुरे संस्कार दिए, बुरा वातावरण घर पे था आपके, तो वो वैसा ही बनेगा। आप बाद में उसको धो सकते नहीं है कि अभी हम लोग अच्छे हो गए अभी तो बच्चा सुधरना चाहिए, नहीं सुधरेगा वो, जो बचपन में उसको इंजेक्शन लगाया ना आपने वो परमानेंट रहेगा उसके ऊपर। इसलिए बचपन में उसको इंजेक्शन लगाओ, भक्ति का इंजेक्शन लगाओ, संस्कार का इंजेक्शन लगाओ, अच्छा बोलने का, नहीं गाली देने का, प्रेम से संस्कार देने का लगाओ। वो सब कर सकते हैं आप लोग, ये नहीं बोलना कि अरे प्रभु जी आपको तो पढ़े लिखे आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप जानते हैं सब कुछ, कोई जरूरत नहीं पढ़े लिखे होने की, इंसानियत थोड़ी कॉलेज में पढ़ाते हैं, कौन सा कॉलेज ऐसा इंसानियत पढ़ाते हैं वहाँ पर, डिग्री कोर्स इंसानियत का ऐसा होता है कोई? इंसानियत जो है वो घर में माँ और पिताजी सिखाते हैं, दादी दादा नाना नानी मामा मामी वो सिखाते हैं घर पे, कॉलेज में खाली वो सीखते हैं पैसा कमाने के लिए, बाकी कुछ सीखते नहीं कॉलेज में जाके। अच्छे संस्कार खाली घर पे होते हैं, और वो केवल माँ बाप देते हैं और घर के रिश्तेदार देते हैं, और वो भक्त होंगे तो आप बड़े भाग्यवान हो। इसलिए सब लोगों को विनती करता हूँ मैं, रघुनंदन ठाकुर पहले वो घर में आया क्यों? क्योंकि उसके पिताजी माताजी भक्त थे, और जन्म लेने के बाद माता पिता ने जन्म से उसको बचपन से प्रेम के और भक्ति के संस्कार दिए, इसलिए पिताजी से भी आगे जाकर महान भक्त बना वो। तो पिताजी ने भी उसको अपना पिताजी माना। हमको भी ऐसा रघुनंदन घर में पैदा करना चाहिए, हमारा बच्चा भी रघुनंदन बन सकता है। अगर आप मुकुंद जैसे होंगे तो आपका बच्चा रघुनंदन बन सकता है। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपके घर में भानुप्रिया है, आपके घर में कौन है? हाँ, गिरधारी है, और आपके घर में जयदेव और जय मंगल है, जयानंद है। सबके घर में ऐसे आनंद होंगे, सब लोग बैठे हुए, आपको बनाना है उनको रघुनंदन, तो आपका जीवन सफल है। और अगर आपके घर में कोई नहीं है तो दूसरे के बच्चे को भी संस्कार दे सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।